नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा परम सौभाग्य है कि आप सबके समक्ष आज उपस्थित होकर कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन का रसपान करने का सुवर्ण अवसर प्राप्त है मुझे। सर्वप्रथम परम आराध्य हमारे गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद शिला लोकनाथ स्वामी महाराज के चरण कमलों में बारंबार दंडवत अर्पण करते हुए मैं कृपा याचना की भीख मांगता हूँ, ताकि सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से सही भाव से प्रभु की स्तुति हो सके, हम सबके अंतकरण का शुद्धिकरण हो, कर्ण इंद्रियों को संतोष प्रदान हो और भगवान के चरणों में रति जागृत हो। हमारे पद्ममाली प्रभु के चरणों में भी मेरा दंडवत है, उन्होंने मुझे बहुत कृपा करके यहाँ इस मंच पर आमंत्रित किया। सभी उपस्थित वैष्णव वैष्णवी वृंद, आप सबके चरणों में भी मेरा बारंबार प्रणाम है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो जैसे प्रभु जी ने कहा, आज परम पावन कल्याणकारी मंगलमय भद्रकारी तिथि है। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण जो हमारे गौड़ीय आचार्य संप्रदाय में बहुत वरिष्ठ प्रमुख प्रधान आचार्य हैं, इनका तिरोभाव तिथि है। गंगा माता गोस्वामिनी का आविर्भाव तिथि है। गंगा पूजा भी आज मनाया जाता है और विशेषतः निर्जला एकादशी का अधिवास तिथि है। तो इन सभी विषयों पर विस्तार वर्णन करना ये समय अनुसार आज शायद संभव नहीं होगा। 30 मिनट के समय में इन सभी विषयों पर विस्तार करना, सविस्तार भाव से, भक्तिमय भाव से, प्रोत्साहित भाव से इन पर चर्चा करना, वैसे तो मन में बहुत इच्छा है कि हो सके, पर समय की पाबंदी है, इसको भी हम आदर रखते हुए केवल आज एक विषय पर चर्चा होगी, वो है श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण की महिमा। और फिर हम निर्जला एकादशी के विषय में भी, जैसे महाराज श्री के श्रीमुख से आदेश हुआ है कि इसके विषय में हम कुछ बोले, तो हमारे अंतकरण और वाणी को पवित्र करने के लिए हम उस विषय पर भी अंत में कुछ चर्चा करेंगे। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण के विषय में आज थोड़ा सुन लेंगे, क्योंकि वैष्णवों के विषय में जब हम सुनते हैं तो अंतकरण शुद्ध होता है, अनर्थ और अपराध का शमन होता है। कई बार ये विचार हो सकता है कि भगवान के विषय में तो सुनना दामोदर लीला, पूतना उद्धार, कालिया दमन, गोवर्धनधारी, श्री कृष्ण के भिन्न भिन्न नाना प्रकार के लीलाओं का वर्णन करना, वाह ये तो आनंद है, पर आचार्यों के विषय में सुनने में क्या महत्व है? कई भक्तों के, श्रद्धालु भक्तों के हृदय में भी कभी कभी इच्छा या कभी ये विचार स्फुरित हो सकता है। तो भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक है जो तीसरे स्कंद भागवत में पाया जाता है। श्रुतस्य पुंसाम सुचिर श्रमस्य नान्वंजसा सूरि भिरीडी तरतः तत्तद् गुणानुश्रवणम मुकुंद पादारविंदम हृदयेषु येषाम। ये श्लोक का अब सारांश ऐसा है कि यदि कोई शास्त्र बहुत साल बहुत दृढ़ता से अभ्यास करें और प्रभु के कृपा पात्र के प्रभु के असीम कृपा का कृपा पात्र बन सके, योग्य पात्र बन जाए, प्रभु को आनंद प्रदान करे, सेवा करे, नाम जपे, धाम में वास करे, भक्ति के भिन्न भिन्न अंगों का यदि सेवन करे और प्रभु को रिझ जाए, प्रभु रिझ जाए और प्रभु को ये रिझा ले, तो प्रभु क्या देते हैं भेंट फल स्वरूप इस भक्त को? क्या देते हैं? ये देते हैं कि शुद्ध वैष्णवों के विषय में जहां भी चर्चा होती है, ऐसे कथा, ऐसे सत्र, ऐसे कक्षा में प्रवेश होने का सौभाग्य देते हैं। जैसे अर्थ इसका ये है कि यदि कोई रामलीला, कृष्ण लीला, गौर लीला, नृसिंह लीला बारंबार सुने और प्रभु को रिझाए, प्रभु का हृदय चित्त जब द्रवित होता है करुणा से, तो ऐसे भक्त के प्रति क्या फल देते हैं? शुद्ध भक्त के प्रति या शुद्ध भक्त के संबंध में जो भी चर्चा होती है, ऐसे असेंबली, ऐसे सत्र, ऐसे सभा में बैठकर शुद्ध वैष्णवों के गुणावली का स्मरण, चिंतन, श्रवण करने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। तो कहने का सार ये है कि भगवान के विषय में सुनने के बाद ये सौभाग्य जागृत होता है जब शुद्ध भक्तों के विषय में सुनने का अवसर मिले। तो इसी भाव से हमें सुन लेना चाहिए। ये प्रश्न होता है गंगा माता गोस्वामी ने कहा तो आविर्भाव तिथि है तो ये तो महामहोत्सव है, परंतु श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण के विषय में तो उनकी तिरोभाव तिथि है, ये वही तिथि है जहां पे वो इस लोक को छोड़कर चले गए, उनकी प्रकट लीला को उन्होंने पूर्ण कर दिया, तो इसमें उत्सव भला क्यों कोई मनाए, ये प्रश्न हो सकता है। जन्म तिथि, आविर्भाव तिथि ये तो बस उल्लास, हर्ष उल्लास का विषय है, पर तिरोभाव तिथि तो दुख का विषय है, तो यहां उत्सव क्यों मनाया जाए, किन्हीं के तिरोभाव तिथि को क्यों मनाया जाए? तो इसका अर्थ यह है कि शुद्ध वैष्णव गोलोक धाम छोड़कर हमारे लिए आते हैं, इस जगत में आते हैं संसार के उद्धार के लिए, अपने उद्धार के लिए नहीं अथवा अपने फायदे के लिए नहीं। रूप गोस्वामी, दास गोस्वामी इस जगत में कुछ पाने नहीं आए। मेरे गुरु महाराज एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं गाड़ी के माइलेज का। जैसे गाड़ी खरीदे तो माइलेज देखकर खरीदा जाता है, जैसे कि कितना पेट्रोल पीता है ये गाड़ी और कितनी तेजी से या कितने आगे जा सकता है। जैसे अगर कोई गाड़ी हो केवल पेट्रोल पिए और आगे ना जाए तो ऐसी कोई इच्छा नहीं रखेगा कि ऐसी गाड़ी की खरीदी हो, परंतु कम से कम पेट्रोल में अधिक से अधिक स्थान जा सके तो ऐसे माइलेज वाली गाड़ी सब पसंद करते हैं। तो गुरु महाराज बता रहे थे कलिग्रस्त जीव जो होता है उसकी माइलेज बहुत कम होती है, समाज से ज्यादा लेता है और समाज को कुछ नहीं देता। जैसे खाना पीना वस्त्र घर बार सब भव्य, सब ऐश और आराम, सब ऐश्वर्य परिपूर्ण, और जगत को क्या देता है, वृक्ष काटता है, यहां वहां गंदगी करता है, थूकता है, गंदी गालियां देता है, प्रदूषण, हर प्रकार का प्रदूषण देता है जगत को, ध्वनि प्रदूषण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि का प्रदूषण, स्थल प्रदूषण, हर प्रकार का प्रदूषण। लेता बहुत कुछ है, देता कुछ नहीं। परंतु हमारे आचार्य गण है, इनके माइलेज के विषय में सोचिए, पहनते हैं कोपिन का वस्त्र, रहते हैं वृक्ष के नीचे, पाते हैं प्रसाद मधुकरी करके, भौतिक इच्छा के पीछे भागते नहीं, और जगत को क्या देते हैं, गीता और भागवत में टीका, बंगाली भाषा और संस्कृत भाषा में पद, गीत, श्लोक, व्याख्या, ये सब देते हैं। वृक्षों के नीचे बैठकर कौपिन धारण करके मधुकरी करके ये देकर जाते हैं जगत को। तो कहने का सारांश ये है कि जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, आचार्य गण होते हैं, वो भगवत धाम से अवतरित होते हैं उस जगत से, इस जगत कुछ पाने नहीं, प्रचुर मात्रा में देने आते हैं, और ये देकर जब लीला परिपूर्ण होकर समाप्त करके, अपने प्रकट लीला को समाप्त करके अंतर्ध्यान होकर गोलोक प्रस्थान करते हैं, तो ये इस भाव से दुख का खबर है कि हमें उनके संग से हम वंचित हो गए, तो अवश्य ये विरह है, परंतु वो पुनः भगवान से भेंट पाए और भगवान के नित्य लीला में प्रवेश हुए और उनके नित्य सेवा में पुनः नियुक्त हुए, तो ये एक उल्लास की बात है। एक और बात यह है कि वैष्णव का आविर्भाव और तिरोभाव ये दोनों मंगलमय है, परंतु हमारे दृष्टिकोण से यदि सोचा जाए, वैष्णव का जब आविर्भाव होता है तो हम उनको पहचानते नहीं, छोटे से नन्हे से बालक के समान वो अवतरित होते हैं, तो उनके गुरुत्व, उनके महत्व को हम नहीं पहचान पाते। पर वही आचार्य जब तिरोभावित होते हैं, अंतर्ध्यान होते हैं, तो बहुत दुख होता है, रोते हैं, क्यों, क्योंकि अब उन्होंने उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र, उनका सोच विचार, उनकी सेवा, उनकी भगवान के प्रति आसक्ति, उनकी करुणा, उनके सद्गुण सब पीछे छोड़कर गए हैं। एक वैष्णव का महत्व, गुरुत्व तब पता चलता है जब वो तिरोभाव प्राप्त करते हैं, जब वो आविर्भूत होते हैं तभी भी वो महान है पर हम पहचान नहीं पाते, परंतु जब वो तिरोभावित होते हैं, हाँ, वो जब अंतर्ध्यान होते हैं, तब कलिग्रस्त जीव भी पहचान पाता है, ओहो क्या दुर्भाग्य है, ऐसे महान वैष्णव हमारे समक्ष थे और उनके संग का मैं लाभ नहीं ले पाया। तो इसलिए आविर्भाव और तिरोभाव दोनों महत्व है, परंतु हमारे दृष्टिकोण से तिरोभाव अत्यधिक आवश्यक है, मनाना उत्सव के रूप से, क्योंकि उसी वैष्णव के महत्व और गुरुत्व को हम अब पहचान पाए। तो चलिए आज हम श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण का आविर्भाव 17वें शतक के अंत में हुआ। बालेश्वर नामक स्थान जो रेमुना के पास है, जो खीरचोर गोपीनाथ मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जहां गौर निताय भी गए हैं, उस स्थान में इनका जन्म हुआ। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनके पिता जो है वो कृषि क्षेत्र की सेवा करते थे, परंतु जिसको एग्रीकल्चर कहते हैं या फार्मिंग कहते हैं, परंतु श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण को रंच मात्र, लेश मात्र भी इसमें रुचि नहीं थी। जन्म से लेकर संस्कृत के प्रति, न्याय के प्रति, व्याकरण के प्रति, नाट्य शास्त्र के प्रति और सभी प्रकार के आयुर्वेद शास्त्र के प्रति और गणित शास्त्र के प्रति और ज्योतिष शास्त्र के प्रति बहुत रुचि, मानो एक विद्वान जन्म से लेकर इन सभी शास्त्रों में कुशल और बहुत निपुण। इतना प्राप्त करके भी हृदय में कहीं कुछ एक मरुभूमि रह गई, कुछ खाली खाली रहने लगा। उनको लगा कि कहीं कुछ कमी है जीवन में, हमने ये सब तो पढ़ लिया, मानो ऐसा लगता है कि शहद या मकरंद को पाने के बजाय हमने केवल बाहर से उनकी जो बाटली है उसको चख लिया, पर उसको अभी तक खोलकर अंदर के शहद, अंदर के मकरंद को हम अब तक प्राप्त नहीं कर पाए। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण को अभी इच्छा जागृत हुई कि अधिक से अधिक दर्शन शास्त्र, वैदिक वेदांत शास्त्रों का पठन किया जाए और जीवन के लक्ष्य को, जीवन के उद्देश्य को हम प्राप्त करें। इसी उद्देश्य से वो ओडिशा क्षेत्र को छोड़कर दक्षिण भारत की ओर जाते हैं और विशेष करके मैसूर जो कर्नाटक क्षेत्र में है वहां वास करते हैं। मध्व संप्रदाय, परंपरागत जो आचार्य गण है इनके द्वारा स्थापित आश्रम में वास करते हैं। वहां कई सारे वेदांत दर्शन शास्त्र सिखाने वाले सन्यासियों के श्रीमुख से कथा रसपान करते हैं और प्रभावित होकर दीक्षा ग्रहण करते हैं और सन्यास भी प्राप्त कर लेते हैं। सोचिए अब श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ऐसे स्तर पे हैं, सभी शास्त्रों का उन्होंने गहराई से पठन किया है, अध्ययन किया है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से श्रीपाद मध्वाचार्य जी के परंपरा में, संप्रदाय में अब दीक्षा प्राप्त करके सन्यास भी प्राप्त किए हैं। इतने बड़े प्रकांड विद्वान, सभी शास्त्र पारंगत और वक्तृत्व कला में भी उनके सामने कोई खड़ा नहीं रह पाए, क्योंकि तर्क वितर्क करते हैं तो एकदम कुशल, प्रवीण, अव्वल नंबर से सबको परास्त करते थे। जगन्नाथपुरी आए, यही श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण भ्रमण करते करते जगन्नाथपुरी आए और जैसे वो कथा करते थे, बोलते थे, हजारों की संख्या में लोग प्रभावित होते थे। कई लोग पंडित हुए केवल उनकी वाणी को सुनकर, उनके शिष्यत्व को प्राप्त करके, उनके अनुगत रहकर कईयों ने दर्शन शास्त्र पारंगत प्राप्त किया उनके शरणागत होकर। तर्क वितर्क में भी प्रवीण हुए कई उनके जो अनुयायी हैं और ऐसे महासमुद्र समान ज्ञान विज्ञान पारंगत श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण को आदर सम्मान हर स्थान में मिला। फिर उनके जीवन में एक मानो एक नई मोड़ आई, जहां उनका उनकी भेंट हुई, उनका मिलन हुआ राधा दामोदर गोस्वामी जी से। अब ये राधा दामोदर गोस्वामी जी कौन है, मैं कुछ 10 सेकंड में आपके समक्ष इसको प्रस्तुत करने की इच्छा रखूंगा। आप सब ध्यान से सुने, कई नाम होंगे पर ये एक नाम से दूसरे नाम तक ले जाएगा हमें। हम जानते हैं श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के कृपा पात्र शिष्य हैं नित्यानंद प्रभु, जिनके कृपा पात्र हैं गौरीदास पंडित, उनके शिष्य हुए हृदय चैतन्य प्रभु, जिनके शिष्य थे श्यामानंद प्रभु, उनके शिष्य हुए रसिकानंद प्रभु जिन्होंने ओडिशा में प्रचुर मात्रा में प्रचार किया, उनके शिष्य हुए नयनानंद पंडित और उनके शिष्य थे राधा दामोदर गोस्वामी, जिनका भेंट, जिनका मिलन बलदेव विद्याभूषण जी से हुआ। मैं पुनः सभी नाम को दोहराऊंगा ताकि यदि कोई लिखने की अभिलाषा रखे लिख सकते हैं। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे नित्यानंद प्रभु, जिनके शिष्य थे गौरीदास पंडित, जिनके शिष्य हुए हृदय चैतन्य प्रभु, जिनके शिष्य हुए श्यामानंद प्रभु, जो तीन श्यामानंद नरोत्तम श्रीनिवास से एक है, उनके कृपा पात्र शिष्य हुए रसिकानंद प्रभु, उनके शिष्य थे नयनानंद पंडित और उनके शिष्य हुए राधा दामोदर गोस्वामी। अब राधा दामोदर गोस्वामी जी गौड़ीय वैष्णव थे जैसे हमने परंपरा गिनाई। इनसे जब बलदेव विद्याभूषण की भेंट हुई, तर्क वितर्क हुआ और राधा दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख किया। ये पहले बार था जब शिला बलदेव विद्याभूषण जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुना। अब तक वो सुने नहीं थे क्योंकि मध्व संप्रदाय के शास्त्र पारंगत थे। अब तक श्री चैतन्य महाप्रभु के शास्त्रों को या उनके दर्शन, उनके मत को सुने नहीं थे। राधा दामोदर गोस्वामी ने अचिंत्य भेद अभेद तत्व के विषय में वर्णन किया, बताया कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण के अभिन्न स्वरूप कलिकाल में करुणा करके अवतीर्ण हुए। शची माता के सुपुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में कैसे केशव कश्मीरी और फिर आगे जाकर प्रकाशनंद सरस्वती सार्वभौम भट्टाचार्य ऐसे प्रकांड विद्वानों को पराजित करके परास्त करके उन्होंने केवल ज्ञान के क्षेत्र में नहीं भक्ति रस के क्षेत्र में भी सबसे बड़े पद आचार्य पद को प्राप्त किए। हैं तो वैसे भगवान पर आचार्य भक्त रूप में अवतरित हुए। जब बलदेव विद्याभूषण इन सभी बातों को सुने और शास्त्र के प्रमाण से देखे कि श्री चैतन्य महाप्रभु कोई केवल गौड़ीय दृष्टिकोण से भगवान नहीं, शास्त्र के प्रमाण के दृष्टिकोण से श्री चैतन्य महाप्रभु वास्तविक भगवान के ही अवतार हैं या अभिन्न स्वरूप हैं, अवतारी हैं, जब वो ये सुने तो उनका मन आकृष्ट हुआ महाप्रभु के चरणों के प्रति। उन्होंने जीव गोस्वामी द्वारा जो षट संदर्भ हैं, छह संदर्भ, इसका पठन किया और क्योंकि वो मध्व संप्रदाय के प्रकांड पंडित थे संस्कृत के प्रति और विस्तार स्पष्टीकरण के प्रति उनका आकर्षण था, तो जीव गोस्वामी के षट संदर्भों को पढ़कर और राधा दामोदर गोस्वामी की व्याख्या को सुनकर श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को पूर्ण रूप से आत्मसात किया और अपने आप को शरणागत होकर प्राण न्योछावर किया इस संप्रदाय के दर्शन के प्रति, इस संप्रदाय के मत के प्रति। राधा दामोदर गोस्वामी ने बलदेव विद्याभूषण को अपना विद्यार्थी माना। बलदेव विद्याभूषण ने वैसे तो दीक्षा की याचना की परंतु राधा दामोदर गोस्वामी कहे, नहीं, आप एक बहुत प्रामाणिक प्रमुख मध्व संप्रदाय के दीक्षित आचार्य से आप संन्यास प्राप्त किए हैं तो आपको पुनः दीक्षा देना ये मर्यादा व्यतिक्रमण होगा, तो मैं आपको विद्यार्थी मानूंगा, शिष्य नहीं। परंतु इस समारोह का हम एक बहुत सुंदर उत्सव रूप से हम मनाएंगे इसको। फिर एक उत्सव मनाया गया जहां श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण को राधा दामोदर गोस्वामी ने सबके समक्ष शिष्य के रूप में अर्थात विद्यार्थी के रूप में स्वीकारा और बलदेव विद्याभूषण जी ने भी घोषणा की कि मैं आज से श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके मत, उनके आचरण, उनके विचार, उनके उपदेश, उनके शिक्षाओं को पूर्ण रूप से मैं ग्रहण करता हूँ, अपने आप को इस गौड़ीय संप्रदाय के हाथों सौंपता हूँ, मैं इन्हीं के शिक्षाओं को आत्मसात करने की चेष्टा करूंगा। राधा दामोदर गोस्वामी ने अब बलदेव विद्याभूषण को वृंदावन भेज दिया ताकि वो वहां श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती के चरणाश्रित होकर शिक्षा प्राप्त कर सके। देखिए भक्तों, गौड़ीय संप्रदाय में ये पाया जाता है, ये रीति, कि जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे श्रीनिवास आचार्य और हृदय चैतन्य प्रभु के शिष्य थे श्यामानंद पंडित और फिर लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य थे नरोत्तम दास ठाकुर, तो इन तीनों ने तो दीक्षा ग्रहण की तीन आचार्यों से, परंतु तीनों ने जीव गोस्वामी को अपना शिक्षा गुरु मानकर उनके अनुगत्य में रहकर शास्त्र का पठन किया, अध्ययन किया। तो उसी प्रकार राधा दामोदर गोस्वामी ने बलदेव विद्याभूषण को अपनाया परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के चरणों में सौंप दिया शिक्षा के लिए। तो तब से लेकर बलदेव विद्याभूषण शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के चरणाश्रित हुए और वर्णन आता है कि नवदीप होकर वो वृंदावन गए क्योंकि महाप्रभु के चरणाश्रित हुए थे तो महाप्रभु के धाम को देखने की बहुत अभिलाषा हुई। तो फिर नवदीप धाम गए, फिर वृंदावन गए और वृंदावन जाकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के चरणाश्रित हुए। चक्रवर्ती पाद बहुत प्रसन्न हुए कि ऐसे प्रकांड विद्वान सन्यासी इतने नम्र भाव से और ज्ञान की जिज्ञासा रख के इच्छुक भाव से उनके चरण में आए हैं। तो ये देखकर, ये नम्रता को देखकर विद्या विनयेन शोभते, कि विद्या जब विनय कोई नम्र होता है तभी ही उन उनका जो ज्ञान है, उन उनकी जो विनय विद्या है वो और प्रकाशित होती है, शोभते वो और शोभायमान होता है। तो चक्रवर्ती पाद ने फिर बलदेव विद्याभूषण को अपनाया और कहा कि मैं आपको श्रीमद् भागवत सिखाऊंगा। इसके साथ साथ पीताम्बर दास नामक एक और आचार्य हैं, आप उनसे रस शास्त्रों का अध्ययन कर ले उनके चरणों में और मैं आपको भागवत सिखाऊंगा। तो ये रहा बलदेव विद्याभूषण और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भेंट। और हम देखते हैं कि बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के चरणाश्रित होकर बहुत सेवा किए, इसके विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है पर समय कम है, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में आपको एक घटना के विषय में कहूंगा। आप सब सुने होंगे पर जितना अधिक इसके विषय में सुनेंगे उतना ही अधिक एक गौरव जागृत होता है, एक गर्व जागृत होता है कि बलदेव विद्याभूषण ने कैसे गौड़ी संप्रदाय का जो विजय ध्वज है एक बहुत सुंदर तरीके से लहराया, नहीं उसको स्थापित किया, गौड़ी संप्रदाय के अभिमान, गौड़ी संप्रदाय के आदर को बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने स्थापित किया। समय ऐसा था राजनीतिक दृष्टिकोण से, वो वही समय था जब मुसलमान राजाओं ने जैसे औरंगजेब और उनके अनुयायी, उन्होंने वृंदावन के कई मंदिरों को नष्ट विनष्ट कर दिया था कई कारणों के कारण, अब मैं उसके विषय में नहीं जाऊंगा, पर जो भी हो, ईर्ष्या हो या जो भी हो, धर्म के प्रति कभी कभी मतभेद होता है, तर्क वितर्क होता है और प्रेम के बजाय वैरी प्राप्त होती है। तो जो भी हो, षड गोस्वामियों ने इतने प्रेम से जो राधा कृष्ण की मंदिर स्थापना की वृंदावन में, तस्मस करने का की चेष्टा औरंगजेब और उसके अनुयायी ने किया, पुजारी वृंदावन के अलग अलग मंदिरों के विग्रह लेकर भागने लगे और जो वैष्णव राजपूत राजाएं थे उनके पास जाकर रक्षा की याचना की। तब जो वैष्णव राजपूत राजा थे सब जयपुर में थे, राजस्थान में थे, तो वृंदावन के विग्रह सब गए जयपुर और करौली। राधा रमन जो वृंदावन में है और वृंदा देवी जो कामवन में है, ये दो ही विग्रह हैं जो ब्रजमंडल को छोड़कर कभी नहीं गए, बाकी सब चले गए। जीव गोस्वामी के राधा दामोदर, रूप गोस्वामी के राधा गोविंद देव सब राजस्थान गए। अब कोई कहेगा राजस्थान क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वृंदावन उत्तर प्रदेश और राजस्थान बगल बगल के राज्य हैं, तो इससे वहां उस तरफ जाना बहुत सरल होता है। गोविंद देव जो हैं वृंदावन के, ये पहले राधा कुंड गए, फिर कमान गांव वृंदावन गए जहां 30 साल रहे, और राजा राम सिंह नाम के एक राजा थे और उनकी राजधानी थी कमान, तो वहां क्योंकि उनके राज्य की राजधानी थी तो वहां राधा गोविंद देव रूप गोस्वामी के बहुत सुरक्षित थे। वैसे तो ठाकुर हमेशा सुरक्षित हैं, वही है जो हमें सुरक्षित रखते हैं, पर भक्तों का भाव है कि जो भी शत्रु हैं और जो भी अलग अलग राजा थे जो आक्रमण करने हेतु आ रहे थे उनसे रक्षा हो। तो इसी कारणवश पहले राधा गोविंद देव वृंदावन छोड़कर राधा कुंड गए, फिर कमान गांव गए, राजा राम सिंह रक्षा किए 30 साल, फिर मृत्यु को प्राप्त किए, फिर उनके बाद जो राजा आए वो यौवन अवस्था में ही चले गए, फिर उनके बाद जो राजा हुए वो केवल 11 बरस के थे, राजा जय सिंह बहुत प्रसिद्ध राजा हैं, वो 11 बरस के आयु में राजा बन गए और अब इन्होंने राधा गोविंद देव की रक्षा की। क्यों? क्योंकि जब वो 7 बरस के थे जब तब वृंदावन आए, और जैसे कई भक्त टी शर्ट लेके चलते हैं, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, मैं वृंदावन आया और अपने हृदय को यहीं के ब्रज के गलियों में खो बैठा राधा और कृष्ण के प्रेम में या भक्ति में। तो उसी प्रकार राजा जय सिंह भी टी शर्ट नहीं डाले थे पर उन्होंने भी अपने हृदय को वृंदावन के भक्तिमय धारा में समर्पित कर दिया। इसी कारण जब वो 11 बरस के थे और राजा बन गए और अब पूरा जो उत्तरदायित्व है उनके कंधों पे आ गया, तो उन्होंने कहा कि राधा गोविंद देव को अब मेरी राजधानी की ओर प्रस्थान किया जाए। उनकी राजधानी कौन सी थी? जयपुर थी। तो इसी कारणवश हम देखते हैं राधा गोविंद देव जो वृंदावन के थे, पहले राधा कुंड गए, फिर उसके बाद कमान गांव गए क्योंकि वो राजधानी थी तब, उसके बाद जब राजा जय सिंह राजा बने और उनकी राजधानी जयपुर में थी इसलिए राधा गोविंद देव वहां जयपुर की ओर गए। आज तक राधा गोविंद देव जयपुर में है इसी ऐतिहासिक कारण के तौर पे। तो सभी भक्त दर्शन लेते थे और विशेष करके राजा जय सिंह प्रतिदिन जाकर राधा गोविंद देव को प्रेम से निहारते थे और दर्शन लेते थे। अब स्थिति ऐसी है कि उसी जयपुर के 10 किलोमीटर बाहर गलता पीठ है, जो रामानंदी संप्रदाय का बहुत विशेष स्थान है। ये वही स्थान है जहां गालब ऋषि सत्ययुग में 60,000 साल तपस्या किए थे। बहुत पावन भूमि है, गलता पीठ आज भी प्रसिद्ध है। ये रामानंदी संप्रदाय का बैठक माना जाता है। कोई कहेगा कि ये रामानंदी संप्रदाय क्या है, वैसे जो हम रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय को जानते हैं, प्रसिद्ध है, विख्यात है, दक्षिण भारतीय संप्रदाय है, उन्हीं के उत्तर भारतीय अंग है रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय एक बहुत बड़े आचार्य स्वामी रामानंद आचार्य जी द्वारा स्थापित है, और इनके विशेष अधिष्ठात्री देव सीताराम है। नाम भी ये जपते हैं राम नाम, और विशेष आस्था रखते हैं चित्रकूट और अयोध्या नगरी में। अब देखिए, मैं ये सब आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जयपुर, जहां गलता पीठ और जहां रामानंदी संप्रदाय का अधिकांश प्रधानता या प्रमुखता पाई जाती थी, असंख्य भक्त थे सीताराम के, वहां अब गोविंद देव आ गए और राजा मान रहे हैं गोविंद देव को। और ये गोविंद देव है रूप गोस्वामी के विग्रह, और रूप गोस्वामी है गौड़ी संप्रदाय के। अब बात ऐसी हुई कि संप्रदायवाद कुछ नई बात नहीं है, पीढ़ियों से चली आई है। भय हरि कृष्ण दास बोलकर रामानंदाचार्य के शिष्य के शिष्य हुए, जिन्होंने जयपुर में बहुत प्रचार किया, भय हरि कृष्ण, और इतना प्रचार किया कि तब के जो राजा थे जयपुर के, पृथ्वीराज थे, पृथ्वीराज नाम था राजा का, और महिषी भी थी, वो दोनों उनके प्रचार से प्रभावित हुए और रामानंदाचार्य जी और उनके संप्रदाय में वो दीक्षा प्राप्त किए और वहीं आश्रम बनाए। तो ये गलता जी पीठ आज भी प्रसिद्ध है। अब देखिए, राजा जय सिंह ने वहां राधा गोविंद देव को लाए, पुजारी भी गौड़ीय वैष्णव, विग्रह भी गौड़ीय वैष्णव, अब जो भजन गाए जाते हैं वो भी गौड़ीय वैष्णव। अब एक स्थान जहां रामानंद संप्रदाय के सब भक्त हैं, सीताराम की आराधना करते हैं, अब वहां गौड़ीय वैष्णव राधा कृष्ण आए। वैसे संप्रदायवाद तो ठीक नहीं है, जो अयम निज परो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधा एव कुटुम्बकम। जो उदार चित्त वाले होते हैं वो जानते हैं जो राम है वही श्याम है, जो सिया है वही प्रिया है, आप सिया राम कहो या प्रिया श्याम कहो वही है। परंतु जो लघु चेतसाम, जो बहुत छोटे सोच विचार वाले होते हैं, वो सांप्रदायवाद करते हैं, संस्थावाद करते हैं, ये आपका ये मेरा ऐसे करके पक्षपात करते हैं। तो उनमें भी सारग्रही भक्त कई सारे थे, पर थोड़े जो संप्रदायवाद में फंसे थे वो जाकर राजा के समक्ष जाकर ये एक बात को, शिकायत को दर्ज किए कि संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्ते निष्फला मता अथा कल भविष्यन्ति चत्वारा संप्रदायिना, कि ये गौड़ीय संप्रदाय तो कौन सा संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय जानते हैं, श्री संप्रदाय जानते हैं, रुद्र संप्रदाय जानते हैं, कुमार संप्रदाय जानते हैं, अब ये गौड़ीय वैष्णव कौन है, कौन सा संप्रदाय ये, और आपने आकर उनके विग्रह को स्थापित कर दिया, तो ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ प्रामाणिक नहीं लग रहा है। औपचारिक भाव से देखा जाए तो ये पूजा ठीक नहीं है। तो अब राजा थोड़े विचलित हो गए, राजा जय सिंह, उन्होंने सभी महंतों को एक पत्र लिखा कि गौड़ीय संप्रदाय के विषय में अब किसी ने ये एक बात फैलाई है और अब बात उठाई है, तो अगर कोई इस बात का खंडन कर सके तो कृपया करके करे। तो श्यामचरण शर्मा बोलकर एक बहुत बड़े गौड़ीय वैष्णव पंडित थे, जिन्होंने पत्र में उत्तर दिया, संस्कृत पत्र में कहा कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, सभी संप्रदाय का सार बात यही है कि प्रभु से जुड़ा जाए, प्रभु ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और हम उनके अनुयायी हैं, तो कोई संप्रदाय की बात के विषय में कौन क्यों छेड़ेगा बात, चैतन्य महाप्रभु भगवान है, हम भगवान के अनुयायी हैं, सभी संप्रदाय का यही सार है कि हम भगवान से जुड़े बस, तो अब क्या है इसमें और क्या मतभेद है। तो राजा ने इस पत्र को पढ़ा, परंतु रामानंद संप्रदाय के जो थोड़े जन थे जिन्होंने इस बात को उठाया था, वो इससे कुछ प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कहा कि राधा कृष्ण दोनों बहुत पूजनीय हैं, अलग अलग कमरे में सेवा तो की जा सकती है, पर साथ में राधा कृष्ण की सेवा करना ये तो धर्म के विपरीत है। लक्ष्मी नारायण तो विवाहित दंपति है, सीताराम भी दंपति हैं, पति पत्नी हैं, परंतु राधा कृष्ण के विवाह के विषय में तो हम कुछ नहीं जानते, और जो विवाहित ना हो उनकी सेवा प्रतिष्ठा लगाए और आप स्थापित करें, ये तो धर्म के विपरीत हुआ। ऐसे बात फैलने लगी। पहली बात तो संप्रदाय के विषय में कितना प्रामाणिक है, दूसरी बात राधा कृष्ण की सेवा के विषय में, अब तीसरी बात उन्होंने कहा कि गौड़ीय वैष्णव केवल कृष्ण कृष्ण कहते हैं, नारायण तो स्रोत हैं कृष्ण के, और ये लोग पलट कर कहते हैं कृष्ण स्रोत है, नारायण अवतार हैं। हम कुछ समझ नहीं पाए। ऐसे इन्होंने बात कहा, राजा जय सिंह ने पत्र लिखा सभी पंडितों को, महंतों को, कि यदि आप गौड़ीय संप्रदाय के इस राधा गोविंद देव पूजा और सेवा को चलाना चाहो तो इस सभी बातों का खंडन करो। रामानंद संप्रदाय के जो पंडित हैं इन्होंने इन तीन बातों को अब उठाया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत वृद्ध थे, वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध जैसे कहते हैं, वयोवृद्ध तो थे ही, ज्ञानवृद्ध भी हैं, रस भी रस के अनुसार, तत्व अनुसार सब में वो वृद्ध हैं, परंतु शारीरिक दृष्टिकोण से अब बल नहीं रहा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में कि आकर तर्क वितर्क करे। तो उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को कहा कि इन तीनों बातों का यदि खंडन की जाए तो चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय संप्रदाय का जय ध्वज, विजय ध्वज हम लहरा पाएंगे, अथवा अगर ये ना हो तो महाप्रभु के अस्तित्व का, राधा कृष्ण की सेवा का, और कृष्ण ही स्रोत हैं, इन तीनों बात को कोई आगे जाकर मानेगा नहीं। चक्रवर्ती पाद ने बलदेव विद्याभूषण से कहा, वैसे तो भजनानंदी भाव से हम गुफा में बैठकर भजन कर सकते हैं, परंतु हमारा यहाँ उत्तरदायित्व है, हमारी सेवा यही है कि इन विपक्ष बातों का ठीक से प्रामाणिक तौर से हम खंडन करें। तो बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पूरी रात बैठकर दोनों तर्क वितर्क किए। किस बात में? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रामानंद संप्रदाय से बोल रहे थे, बलदेव विद्याभूषण गौड़ी संप्रदाय से बोल रहे थे, जैसे प्रभुपाद जी कई बार करते थे, अपने शिष्यों के साथ तर्क करते थे। प्रभुपाद जी मायावादी बनेंगे और शिष्य को कहेंगे अब आप खंडन करके दिखाओ, उसी प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गुरु भाव से, बलदेव विद्याभूषण शिष्य भाव से, दोनों पूरी रात तर्क वितर्क किए, और बलदेव विद्याभूषण के प्रकांड ज्ञान, नम्रता, चक्रवर्ती पाद ने जो शिक्षा प्रदान की और भगवान ने जो विशेष अनुकंपा प्रदान की, ये सब एक स्थान हुआ, और बलदेव विद्याभूषण अब गए राजा से मिलने। वैसे तो उनकी इतनी प्रसिद्धि नहीं थी, इतने विख्यात नहीं थे, कोई नहीं जान पाया उनको, तो वहां गए और राजा के समक्ष जाकर कहने लगे कि मैं आपके इन तीन बात जो आपने पत्र के भाव से, पत्र के रूप से सभी महंतों के समक्ष भेजे, इन तीनों बात का खंडन करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो राजा ने कहा रामानंदी संप्रदाय के जो मंत्री है वो भी उपस्थित हो जाए। तो पूरे झुंड में सब आ गए देखने के लिए कि अब क्या होगा। यहाँ बात प्रारंभ हुआ, पहला प्रश्न पूछा गया कि आप बलदेव हो, अच्छा पहली बात अब बताइए आप कौन हो, कौन से संप्रदाय से जुड़े। तो बलदेव विद्याभूषण ने कहा मध्व संप्रदाय का सन्यासी हूं मैं। तो रामानंद संप्रदाय के सब भक्त कहे आप तो प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़े हैं पर बाकी तो नहीं है, तो ये गौड़ीय संप्रदाय क्या है? ये पहली बात हुई। तो श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने शास्त्र के तौर से तत्व और ठीक निर्णय से प्रमाण श्लोक व्याख्या सहित उन्होंने स्थापित किया कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का गौड़ीय संप्रदाय मध्व संप्रदाय से बहुत विशेष गहरा संबंध रखता है, और ये मध्व संप्रदाय का ही अंग है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। रामानंद संप्रदाय के जो भी पंडित थे ये बहुत प्रसन्न हुए। फिर आगे उन्होंने कहा कि अब चर्चा करते हैं, आगे चर्चा करते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कौन से ग्रंथ लिखे, आपके संप्रदाय ने कौन सा ग्रंथ लिखा, और वेदांत सूत्र के विषय में व्याख्या क्या हुई है आपके संप्रदाय में। तो बलदेव विद्याभूषण ने कहा कि हम वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवत को ही मानते हैं, व्यास देव ने 550 सूत्र के रूप में वेदांत सूत्र को प्रस्तुत किया और उस पे जो टीका लिखी गई वो ही है श्रीमद् भागवत। और इसी श्रीमद् भागवत को हम पढ़ते हैं, वही हमारा वेदांत सूत्र का व्याख्या है। तो रामानंद संप्रदाय ने कहा भागवत तो सबके लिए है, भागवत कोई गौड़ीय संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, अपने संप्रदाय का वेदांत सूत्र पर व्याख्या आप प्रस्तुत करें, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। बलदेव विद्याभूषण ने कहा वैसे कोई व्याख्या तो है नहीं, पर आप मुझे थोड़े दिन दे दीजिए, मैं एक लिख के ले आऊंगा। तो राजा आश्चर्यचकित हुए, वेदांत सूत्र व्यासदेव के 550 सूत्रों से विभूषित वेदांत सूत्र, इस ग्रंथ पर आप व्याख्या खुद लिखेंगे और थोड़े दिनों में? श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने कहा बिल्कुल सही कहा, थोड़े दिन दीजिए, मैं स्वयं व्याख्या लिखकर हमारे संप्रदाय का सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम वेदांत सूत्र व्याख्या प्रस्तुत करने की यहाँ इच्छा मैं प्रकट करता हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं आपको इतने दिन का समय देता हूँ, इन दिनों के बीच यदि आप प्रस्तुत किए तो आगे बात बनेगी, परंतु उन दिनों तक अगर आप नहीं प्रस्तुत किए तो जीत रामानंदी संप्रदाय की हो जाएगी और यहाँ राधा गोविंद देव का पूजा कभी नहीं होगा। बलदेव विद्याभूषण ने इस चुनौती को स्वीकारा, राधा गोविंद देव के पास गए और दंडवत दिए, और जब दंडवत दिए रोते रोते दंडवत दिए, हे प्रभु अब लाज आप ही बचा सकते हैं, आपकी सेवा और आपकी पूजा की लाज आप ही बचा सकते हैं, आप कृपा करके मुझे कृपा पात्र बनाए, मुझे निमित्त बनाए, मुझे माध्यम बनाए और मेरे हाथों से ये वेदांत सूत्र के विषय में व्याख्या आप कुछ निर्मित कीजिए। ऐसे भाव से जब दंडवत दिए तो एक हार राधा गोविंद देव के गले से गिरा, पुजारी ले आए और कहे कि हे भक्त आपके हृदय में जो भी इच्छा है इसकी पूर्ति अवश्य होगी। उसी रात राधा गोविंद देव स्वप्न में आए और कहे बलदेव तुम चिंता मत करो, मैं अब बोलूंगा और तुम केवल लिखना, यही रहेगा वेदांत सूत्र पर व्याख्या। राधा गोविंद देव ने अपने श्री मुख से वेदांत सूत्र व्याख्या प्रस्तुत की, बोल रहे थे और बलदेव विद्याभूषण उसको लिख रहे थे। इसीलिए कोई भी भाष्य जब लिखा जाता है लेखक का नाम लिखा जाता है, परंतु जब ये व्याख्या पूर्ण हुई बलदेव विद्याभूषण ने इस ग्रंथ को बलदेव भाष्य न देते हुए गोविंद भाष्य नाम दिया क्योंकि भगवान स्वयं गोविंद देव ने भाषा या एक व्याख्या प्रस्तुत की। बलदेव विद्याभूषण ने इस वेदांत सूत्र पर ये जो गोविंद भाष्य है टीका है इसको प्रस्तुत किया और इस ग्रंथ में तीनों बातों का बहुत सुंदर तरीके से प्रमाण के साथ खंडन किया। पहली बात गौड़ीय संप्रदाय का मध्व संप्रदाय के साथ क्या गहरा संबंध, दूसरी बात राधा कृष्ण के निर्मल शुद्ध प्रेम किस स्तर पे है, और तीसरी बात कैसे कृष्ण नारायण के स्रोत हैं और महाप्रभु उन्हीं के अभिन्न स्वरूप। ये जब प्रस्तुति हुई तो सभी दोनों पक्ष के गौड़ीय संप्रदाय के भी और रामानंद संप्रदाय के दोनों प्रसन्न हुए। राजा ने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को विजय घोषित किया, सभी पुजारी बहुत प्रसन्न हुए। रामानंद संप्रदाय के जो भी पंडित थे देखिए कितने दैन्य भाव से थे, ऐसा नहीं कि गर्व से या कोई मिथ्या अभिमान से कहने लगे अरे अरे ये क्या कह रहा है, नहीं, वो इतने नम्र थे। जब उन्होंने देखा कि श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने बहुत प्रामाणिक तौर पर बहुत सुंदर तरीके से ये स्थापित किया तो वो सब झुक गए और उन्होंने कहा कि आपकी जय हो, आपकी सेवा की जय हो, राधा गोविंद देव की जय हो। तो इस प्रकार राधा गोविंद देव की जो सेवा है ये बलदेव विद्याभूषण ने रक्षा की। गौड़ीय वैष्णवों ने वहां जाकर एक पर्वत पर एक विग्रह भी स्थापित की जिसका नाम था गोपाल और विग्रह का नाम आज है विजय गोपाल। बलदेव विद्याभूषण राधा गोविंद देव के पास गए और कहा हे गोविंद देव आपका नाम गोविंद नहीं, आज से आपका नाम विजय गोविंद है, क्योंकि आपने स्वयं सेवा, आपने स्वयं अपने भक्त को निमित्त बनाकर सेवा ग्रहण की और आपने विजय को प्राप्त किए, तो आप विजयी हुए, आज राधा गोविंद देव राजा विजय गोविंद हो गए। बलदेव विद्याभूषण ने गौड़ीय संप्रदाय की लाज बचाई, वरना आज महाप्रभु को, राधा कृष्ण की सेवा को, हमारे आचार्यों की वाणी को, हमारे संप्रदाय के मत को, ग्रंथों को कोई आदर नहीं दे पाता। बलदेव विद्याभूषण एकमात्र ऐसे आचार्य हैं जब समय था, जब बारिश हो रही थी विपरीत पक्ष के तर्क की, तो बलदेव विद्याभूषण ने सूर्य के समान तर्क दिया और सभी मेघ रूपी संशय रूपी बातों का खंडन करके, उसको दूर करके सूर्य किरण गौड़ीय संप्रदाय का प्रस्तुत किया पूरे जगत को। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब ये सुने बहुत प्रसन्न हुए, आलिंगन किए, और इसलिए हम देखते हैं बलदेव विद्याभूषण मध्व संप्रदाय के सन्यासी होकर, राधा दामोदर गोस्वामी के चरणाश्रित होकर भी, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के साथ शिक्षा और हृदय का इतना गहरा संबंध था। हमारे प्रभुपाद जी ने संप्रदाय का जब उल्लेख करते हैं तो चक्रवर्ती पाद के बाद बलदेव विद्याभूषण का ही नाम दिया जाता है। हमारे प्रभुपाद जी ने बलदेव विद्याभूषण को ही समर्पित किया अपनी गीता। आप गीता खोलकर देखिए, प्रभुपाद द्वारा ये समर्पित है बलदेव विद्याभूषण जी को, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इस भाव से अपने गीता की टीका को बलदेव विद्याभूषण के हाथों सौंपा कि हे बलदेव विद्याभूषण, जिस प्रकार एक नास्तिक समाज के समय आप जन्म लिए और तर्क वितर्क के समाज में होकर आपने शुद्ध गौड़ीय संप्रदाय के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, उसी प्रकार मैं भी इस गीता रूपी जशी आहे तशी यथा रूप एज इट इज भगवद गीता को प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि विपरीत नास्तिक मायावादी बौद्ध या अलग अलग मतभेद के अलग अलग संस्था के मत का खंडन करके शुद्ध गौड़ीय संप्रदाय के मत और सिद्धांत को मैं प्रस्तुत कर सकूं, बलदेव विद्याभूषण हे प्रभु आपके चरण के अनुगत होकर। इसी भाव से प्रभुपाद जी ने उसको समर्पित, उस ग्रंथ को, गीता को समर्पित किया। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने कई सारे ग्रंथ लिखे, गीता और भागवत में टीका लिखी, वेदांत सूत्र में टीका लिखी, 10 प्रमुख उपनिषदों पर टीका लिखी, कई गोस्वामी ग्रंथों पर भी उन्होंने विस्तार किया। उनकी गीता भूषण गीता पर व्याख्या बहुत प्रसिद्ध है और हमारे प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय था। बलदेव विद्याभूषण के कई शिष्य हुए, 2 प्रधान थे, एक जिनका नाम श्री नंदन दास और दूसरे उद्धव दास। उद्धव दास के शिष्य हुए, उनका नाम भी था उद्धव दास। उनके शिष्य हुए सिद्ध मधुसूदन दास बाबा जी सूर्य कुंड वाले, और उनके शिष्य हुए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनके शिष्य हुए भक्ति विनोद ठाकुर, फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, फिर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर, और फिर हमारे प्रभुपाद जी, और फिर इस्कॉन के गुरु वृंद। तो इस प्रकार बलदेव विद्याभूषण का हमने संबंध देखा माधवेंद्रपुरी पाद से, और अब संबंध देखा श्रील प्रभुपाद जी से। तो पूरे संप्रदाय का हमने इस कथा के सत्र में उल्लेख किया। फिर आगे जाकर 1793 में श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने अपने प्रकट लीला को अप्रकट किया, और तब राजा जो थे, राजा प्रताप सिंह, उन्होंने हर जगह पत्र भेजकर बहुत दुख की घोषणा की कि गौड़ीय संप्रदाय के इतने बड़े आचार्य श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण तिरोभावित हुए हैं, और बड़ा उत्सव मनाया गया, विरह शोक सभा, विरह महोत्सव, कई भक्त आकर श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित किए और बहुत रोए। तो आज वही तिथि है उन महान श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण के तिरुभाव होने का अवसर। वैसे तो हम जानते हैं, चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, ईश्वरेर जन्म तिथि जे हेनो पवित्र वैष्णवेर सही मत तिथेर चरित्र, कि जिस प्रकार भगवान का आविर्भाव और तिरोभाव, जिस प्रकार भगवान का आविर्भाव बहुत पवित्र है, उसी प्रकार वैष्णवों का आविर्भाव और तिरोभाव भी बहुत पवित्र है, क्योंकि वैष्णवेर चरित्र सदा पवित्र, उनका चरित्र हमेशा मंगलमय और कल्याणकारी है। श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद की जय।